awakening to a new way of living.
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के महिला प्रभाग के ई कॉन्फ्रेंस के इस दूसरे दिन के आखिरी सेशन में। इस सेशन का टॉपिक है वैल्यूज फॉर सोशल चेंज। इस विषय पर काफी चर्चाएं करने की आवश्यकता है। हम सभी मूल्यों के महत्व को जानते हैं। समाज में परिवर्तन के लिए ऐसे कौन से मूल्य हैं जो आवश्यक है, इस पर चिंतन करना अनिवार्य है। इस सेशन के चेयरपर्सन के रूप में हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी जुड़े हैं। शारदा दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के साथ 5 दशक से भी अधिक समय से जुड़े हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। ये फिलवक्त ब्रह्मा कुमारी के वुमेन्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए दीदी जी से सुनते हैं वैल्यूज फॉर सोशल चेंज के बारे में उनके विचार।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के रक्षक, सर्व के कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव की, आप सर्व दर्शक और श्रोताएं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की विमेन विंग के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम की टू चेंज द सोसाइटी। इसके अंतर्गत वैल्यूज फॉर सोशल चेंज पर आज हम आपस में कुछ बातचीत करेंगे। आज 21वीं सदी को हम देखते हैं तो काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अटेनमेंट्स को हम देखें तो क्लाइमैक्स पर है, लेकिन दूसरी तरफ एट द सेम टाइम एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, क्राइम, सेक्सुअल हैरेसमेंट, गैंग रेप्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, कॉम्पिटिशन, हेट्रेड, क्रिटिसिज्म, प्लंटी ऑफ कंफर्ट्स, लग्जरीज होते हुए भी मनुष्य के मन में शांति, सुख, खुशी, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस नहीं है। प्रतिदिन एक से एक बढ़ करके नए स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं। विशियस सर्कल बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर हर एक के मन में एक परिवर्तन की अभिलाषा है। मैं समझती हूँ समय आ गया है जब एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस की आवश्यकता है और नारी को एक टॉर्च बैरियर बनकर के समाज में पुनः उन वैल्यूज की पुनर्स्थापना के लिए आगे आने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पुलिस एनफोर्समेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, डिफेंस, कलाकार, एरोनेट्स, पॉलिटिक्स, गेम्स, इन सब में नारी ने इतिहास रचा है। कुछ नाम अगर इतिहास के उठा करके और वर्तमान के सुनाओ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अहिल्याबाई एक कुशल प्रशासक, राजिया बेगम, मैडम क्यूरी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सरोजनी नायडू, मार्गरेट थेचर, भंडार नायके, इंडस्ट्रियलिस्ट इंदिरा नुई, मानकोर 104 ईयर्स की एथलेटिक कलावती एक सोशल वर्कर जिसने 4000 टॉयलेट्स बनवाए, कात्यानी जो साउथ इंडिया की 94 इयर्स की है और इस एज में उसने फोर्थ स्टैंडर्ड का एग्जाम दे करके 98% मार्क्स लिए, गार्गी, मैत्रेयी, कौशली, उर्वशी आदि महान नारियां हमने समाज में इतिहास में देखी और उन्होंने एक ऐसे पन्नों पर अपना नाम लिखा जो आज भी हम उनको याद करते हैं। ऐसे समय पर मुझे हेनरी के वो शब्द याद आते हैं, नेचर हैज गिवन वुमेन टू मच पावर्स बट लॉ हैज गिवन टू लिटल। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, जब नारी हृदय पवित्रता का सागर बन जाता है उस समय उससे कोमल दुनिया की कोई वस्तु नहीं है। राष्ट्रपिता सारे विश्व के लिए एक रोल मॉडल महात्मा गांधी ने कहा था, बा तारा तेजे हूं प्रकाश्यो, कस्तूरबा गांधी के लिए कि तेरे तेज से ही मैं प्रकाशित हुआ। नेपोलियन ने कहा था, मुझे एक अच्छी मां दो, मैं विश्व का परिवर्तन कर सकता हूं। और अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं जो कुछ बन पाया हूं उसका श्रेय मेरी मां पर है। इसलिए कहा जाता है, हर सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ है। द हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल कैन रूल द वर्ल्ड। मैन हैज गॉट द विल, वुमन हैज द वे। इसलिए हम अपने मिशन को फोकस करें उस लक्ष्य की ओर कि आखिर भी हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आज मनुष्य ज्ञान, धन, शक्ति के लिए सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा करता है। वर्तमान कॉल ऑफ द टाइम या नीड ऑफ द सोसाइटी वैल्यूज है। वैल्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट। और उसके लिए अगर मैं कहूं, नारी शक्ति उसका सकारात्मक सशक्त माध्यम है। नारी में कुछ स्वाभाविक गुण है जो समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए बहुत बहुत सहयोगी है। चाहे इसे कहें ये ईश्वरीय देन है या उसके अंदर के स्वाभाविक गुण है, त्याग, सेवा, सहनशीलता, एडजस्टमेंट, मोल्ड करने की शक्ति, एक्सेप्टेंस, कॉपरेशन, कंपेशन, लव आदि आदि। प्रश्न उठता है परिवर्तन, परिवर्तन कौन सा, सकारात्मक, सृजनात्मक, पतनोन्मुख, विध्वंसात्मक, विकासात्मक? क्योंकि परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है। हम परिवर्तन किस दिशा में चाहते हैं? चारों ओर अगर हम दृष्टि डालें तो महापरिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ हम देखें, विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है, और दूसरी तरफ हम देखें तो नैतिकता और मूल्य समाज में से लुप्त प्राय हो रहे हैं। ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे समय पर जब हम सबके दिल की पुकार, अभिलाषा, चाहना परिवर्तन है, तो परिवर्तन की लक्ष्य रूपी प्रतिमा पर हम फोकस करें, और वो फोकस करने के लिए हम श्रेष्ठ नैतिक कर्मों का वीजा ले और अपने अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो परिवर्तन के लिए एक सशक्त सामग्री है, और उसमें भी सबसे पहले हमारी सकारात्मक सोच, हमारे शुद्ध विचार, श्रेष्ठ संकल्प, अंदर की समर्थ ताकत, वो हिम्मत, उसको हम जागृत करें और अपने इस बुद्धि रूपी स्टीयरिंग को हम दिशा निर्देश दें कि अब हमको अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है और इस समाज में जो मूल्य लुप्त हुए हैं उसकी पुनर्स्थापना करनी है, क्योंकि नारी समाज की एक इकाई है, नारी परिवार की एक इकाई है, संस्कार डालने वाली, सभ्यता का संचार करने वाली, संस्कृति को जीवित रखने वाली नारी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, हम स्वयं से ये प्रारंभ करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक निराकार परमपिता परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारे विश्व में इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना की, जिसका संपूर्ण संचालन नारियों द्वारा होता है, बहनों द्वारा होता है, हाँ भाई अवश्य साथ में है, लेकिन टोटल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ और जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन सब की संचालन करने वाली बहने ही है। उस पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन किया। उससे मेरा तात्पर्य, उन्होंने हमें जीवन में मूल्यों की, गुणों की, श्रेष्ठ भावनाओं की, सकारात्मक चिंतन की, शुभ भावना और शुभ कामनाओं का संचार किया, और वो संचार ही सिर्फ नहीं किया, परंतु जीवन में हमने उन दिव्य गुणों को, उन मूल्यों को धारण किया, और स्वयं धारण करने के साथ साथ हम औरों को भी वही सिखलाते हैं कि आप भी अपने जीवन में मूल्यों को धारण करो, अपने अंदर से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं, इन नेगेटिव प्रवृत्तियों को निकाल करके मूल्यों को धारण करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा, विश्व बदलेगा। तो स्वयं के अंदर एक दिव्यता, एक अलौकिकता, एक दैवी गुणों को औषधि के रूप में भी मुझे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समाज को स्वस्थ बनाना है, वैल्यू बेस्ड बनाना है, मूल्यवान बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, और ऐसा भारत बनाना है जिस भारत की चीनी यात्री वाहिया और वेनसांग ने महिमा की थी कि भारत सोने की चिड़िया है, लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। पुनः मुझे ऐसे ही भारत का नव निर्माण करने के लिए, जहां हमें अधिकारों की स्मृति रहती है, वहां मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं। हम अपनी सोच बदलें, अपनी दिशा बदलें, अपनी दशा बदलें। उस हेतु अपने मन के इस कैनवस पर मुझे सकारात्मक चिंतन, मूल्यों का विकास, मूल्यों की पुनर्स्थापना लिखना होगा। सरस्वती विजडम की देवी है, इंफॉर्मेशन की नहीं। उसने हमें विजडम दी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। राजयोग मेडिटेशन की जो शिक्षा मिलती है वो राजयोग मेडिटेशन हमारे अंदर के सारे विकार, हमारी बुराइयों को निकालता है और जीवन में मूल्यों को धारण कराता है, हमें मॉरलिटी और एथिक्स सिखलाता है। स्वयं में धारण करके हम समाज के सामने वो उदाहरण प्रस्तुत करें कि परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को यहाँ जो शिक्षा दी, जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया, उसके द्वारा हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ फेथ, करेज, लव, पीस, ऑनेस्टी, कॉपरेशन, ट्रुथ जैसे मूल्यों को हमारे जीवन में धारण कराया। क्योंकि आज हम देखते हैं और इतिहास को हम देखते हैं यादगार के रूप में, जब सीता हरण हुआ तो सारे आसुरी संप्रदाय का नाश हुआ, और जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो महाभारत हुआ। आज समाज के अंदर दुशासन और दुर्योधन है, समय आ गया है इन सब आसुरी वृत्तियों का विनाश होने का। और उसके लिए नारी समाज में जो कर सकती है, शायद ही किसी में ताकत हो फिर से समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए। इसलिए स्वयं में मॉरलिटी, एथिक्स, स्पिरिचुअल वैल्यूज को धारण करते हुए, सदा उसी कॉन्शियस में रहते हुए हम ये अवेयरनेस समाज को दें, ताकि उस समाज के अंदर हम ऐसा सैंपल बन करके दिखाएं जो एक दूसरे को प्रेरणा मिले। जैसे दीप से दीप प्रज्वलित होता है, तो अगर मैं परिवर्तन हो गई, मेरे अंदर मूल्य धारण हो गए, मुझे देख करके दूसरा धारण करेगा। मुझे याद आता है हमारी आदरणीय दादी जानकी, जो चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी कुछ समय पहले ही आपने अपना ये शरीर त्याग किया है। वो हमें हमेशा सिखलाती थी कि रोज सुबह उठ करके 3 टैबलेट्स ले लीजिए, लव, पीस एंड पेशेंस, लव, पीस एंड पेशेंस। सारा दिन इसकी स्मृति में रहे तो कहां भी नफरत, घृणा, अशांति, तनाव और अंदर में किसी भी प्रकार का जोश और क्रोध और हिंसक वृत्ति पनप नहीं सकेगी। इसके लिए हम स्वयं के अंदर 7 बातें धारण करें। पहली बात, अपना लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा रखें। दूसरी बात, अपने मन को सदा कूल रखें। तीसरी बात, रिफ्लेक्ट बिफोर एक्ट। कुछ भी करने से पहले उस कर्म का परिणाम क्या होगा हम ये सोच लें। चौथी बात, बी अपडेटेड, हर बात से अपडेट रहें। पांचवी बात, सी द वर्ल्ड, विश्व कहां जा रहा है और मुझे क्या करना है। छठी बात, पुश हार्ड टू अचीव योर गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके मुझे मेहनत करनी है। मूल्यों की पुनर्स्थापना फूलों पर चलना नहीं है, ये कांटों की ढाल है। और लास्ट, बी पेशेंट, धीरज का फल मीठा होता है। वर्तमान सारे विश्व के अंदर हम देख रहे हैं कितनी महामारी ने सारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर दिया है, और उसमें भी विश्व के जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज, अगर मैं उनमें से नाम लूं, अमेरिका, ब्राजील, रशिया, यूके, इटली, फ्रांस और भारत, मोस्ट अफेक्टेड प्लेस, और उसमें से जो सबसे अच्छा मैनेज किया गया है इसी कोरोना वायरस को, उन कंट्रीज के मैं नाम लेती हूं, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। आप कहते हैं इसका वैल्यूज के साथ क्या कनेक्शन है, लेकिन जो मैंने ये लास्ट सात नाम लिए, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सब की हेड ऑफ द कंट्री विमेन है, जिन्होंने बेस्ट मैनेज किया है इस क्राइसिस को। नारी क्या नहीं कर सकती है, हमें सिर्फ अपनी अंतर की शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट जजमेंट, बेस्ट डिसीजन पावर, बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन पावर उसके अंदर है। तो आज आप सभी को इस अवसर के ऊपर मैं यही अपनी भावनाएं आप पर प्रकट करती हूं कि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाए हुए राजयोग को करने से स्वयं में आप अपनी छिपी हुई शक्तियों को पुनः जागृत करके, टॉर्च बैरियर बन करके और समाज में मूल्यों की स्थापना करने के लिए आप आगे आएंगे, कंधे से कंधा मिला करके करेंगे, तो पुनः हम भारत को वही सोने की चिड़िया देव भूमि बना लेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शारदा दीदी जी का। उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायी वचनों से ये बताया कि समाज में परिवर्तन के लिए मूल्य कितने आवश्यक हैं। अगर मूल्यों की कमी होती है तो समाज में सही रीति से परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा दीदी जी का हमारे साथ समय देने के लिए और अपनी प्रेरणाओं को हमारे साथ साझा करने के लिए। इस सेशन के चीफ गेस्ट की तरफ मैं अभी आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे साथ मुग्धा सिन्हा जी हैं, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और हाल में वो सेक्रेटरी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुग्धा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार इस उपलक्ष में।
नमस्कार। माय वेरी वेरी हार्टियस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू द ब्रह्म कुमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज इन वैल्यूज, एंड आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू बी स्पीकिंग to the Brahma Kumari community, both in India, and I am also given to understand globally. This is going to be watched globally. So thank you very much for this opportunity to speak about the role of women in bringing about social change, a topic which is very, very dear to me, and also because we are today in these very, very unprecedented and unpredictable times of the COVID-19, nano-sized 1 gram invisible virus has brought us all home. And as I am very, very fond of saying that in this journey of life, we are only walking each other home. The return to basics, be it the immigrants abroad who are coming back to their various countries at home, be it the migrants in the countries itself who are going back, returning to the villages, the concept of the home and the concept of the homemaker, which holds the home and the household together, has once again become a center stage of discussion, not just in social conversations, but also in terms of governance, where governments and corporate sectors together are talking of work from home. So I think at this point in time, it could, in fact, there couldn't have been a better time for the Brahma Kumaris International Organization to talk about the role of women, especially as we make a transition, especially as we are trying to overcome these very, very difficult times where the home has been providing us solace, as also because we have been locked down for such a long time, we have also been facing issues in the home, and it's only because of the woman of the household, the woman of the home, that we are managing to move forward. If we have read stories about how the COVID was managed, and there are lots of articles that even you would have seen, where we have found that countries like Germany, countries like New Zealand, countries like Australia, countries where we had women leaders, they seem to have, especially the Scandinavian countries, Norway, Finland, we have seen that they have done a better management of the health pandemic which has arisen out of COVID. I also recall having read when something that Margaret Thatcher said, who was the first woman Prime Minister of United Kingdom, and she said something very nice which resonates with me very, very strongly. And she said that if you want something, if you want something said, ask a man, and if you want something done, ask a woman. And we have seen that women leaders heading countries have managed to bring their countries out of the COVID situation in a far, far much better manner. So the question that arises is, what is it? What are the inherent qualities that a woman brings on the table which can help not just the household but also society, neighborhoods, countries, nations, globally across the world, and also bring about the change that we wish to see in the world? Because if you recall, Mahatma Gandhi said that you must become the change that you see in the world. Maya Angelou has also said, and she's in fact written a lot of poems which say, I arise, you cannot put a woman down. She in fact says, women are phenomenal women. So why do we think that women will be able to bellwether this change that we want in social values, in society that we see around us? One can say a lot of things about the inherent qualities of a woman. And I would like to take you back to this very, very fundamental, anecdotal story that I had heard. And it is very different from the stories that one reads, because the story that I am going to share with you today is a politically correct story that I have heard. And it is said that God first created a woman, and it is very different from the stories that you would have read in the Testament or other religious texts, where it is believed that the woman, that Eve, was born out of Adam's rib. But the politically correct version tells us that God first created a woman, and when the woman got bored, God created a lesser version in terms of human being, and that is man. Though I am not saying that we must be differentiating, because when we talk of humanity, I prefer to talk of that concept of Ardh Nareshwar, which we find in Shiva and Shakti in the Indian context, where the feminine qualities and the masculine qualities, the yin and the yang, reside in every human being. But that was on a very, very lighter note to tell you that woman was God's penultimate creation, the best creation. And when we talk of humanity as a whole, we also talk of being in sync with nature. And one of the fundamental things why women become better decision makers is also because they bring those softer skills of communication, of compassion, of humanness, of humanity, of the milk of human kindness. I think which are those softer skills which are very, very required in this world of that we have reduced this world to. We have turned nature into a bazaar. The world has become a very, very transactional place. So I think COVID has also brought this realization back home that it is important to make more out of less, to become more, to become less consumeristic and more in sync with nature. And I think women are able to do it beautifully. Also, I think when you talk of courage, somehow the focus of courage has always been on the very, very physical aspect of strength. But if you look at the internal and eternal qualities of courage and valor, because discretion is also a better part of valor, then I think a woman who ends up giving birth, is able to birth, has a lot of creative force, and that force is her strength. Because if you look at the physical process itself of giving birth, and I'm not making a distinction, I'm not putting motherhood on a pedestal at all, but I'm just telling you because that is the generic journey of a woman, that during childbirth, a woman experiences pain to the extent of 208 bones of her body getting broken. So that is the intensity of the pain that she is able to undergo. Also look at the various physical processes, also look at the very psychological processes, the change that happens in a woman's life in terms of the relationship. She enters into puberty, there is a change that happens. She enters into betrothal, moves from her parents' family to another, her in-laws' family. There is a psychological shift which is happening. She gets married. Also look at what the world is doing to her in terms of putting labels upon her. If she loses her husband, she becomes a widower. And she is able to survive it all. Everything, the harshness of the world, the cruelty of the world, and yet she is able to deliver, yet she is able to maintain her soft core, yet she is able to have a smile on her face and retain her innocence. I think we must look at these qualities. So I think a woman by herself, if you don't look at her body, because the body anyways is very, very transient. So look at the soul of the woman, and the mind has no gender. I keep telling people that when they call me and when they tell me, oh, how does it feel to be the first lady collector? How does it feel to be a lady administrator? I tell them that we are trained to be administrator. Any job is not a gendered role. The mind does not have a gender. The body only has a gender. And now you have so much of fluidity. The other important thing that science has taught me, interestingly, is that science believes in a very, very translational approach, which is the approach where you work with, interdisciplines, multidisciplines, transdisciplines to solve problems of society. And when you look at women, you find that she is an amalgam of multidimensional and multi-sectoral approaches to life, because she is undergoing so many changes. She's a daughter, she's a sister, she's a wife, she becomes an aunt, she becomes a mother. So I think she is playing many more important roles. She's balancing now in these modern times. She's also getting highly educated. She's not just, holding the household. She's not just the CEO of her own household, but she is also in the actual real world, dominated by a patriarchal setup, also making her own niche and doing so well, be it in the education field where she's performing much better than the male students. She is, when we look for inspiration in the field of education, we look at Malala Yousafzai, who won the Nobel for fighting for women's rights. The women's suffrage was a long process of struggle brought about by women's persistent courage in fighting, in raising their voice, being resistant, being very persistent about resistance. So I think women, it is also important, they also say back home in India that if you teach one woman, she is able to teach the next seven generations. So that is the impact, that is the domino impact that women have in society, because you know, women believe in sharing and caring. Those are two very, very inherent qualities that come very, very naturally to women, because that is how they have been designed as compared to probably their counterparts. But the world is made up of the better and the bitter half, and women occupy not just the 50%, but also the entire universe, because the society needs to learn to work with women, because women don't need to be empowered. Women were always strong. The society needs to realize the strength that women have. And I think that is the very, 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 very simple distinction, because, you know, empowerment of women is no charity. Empowerment of women really doesn't mean that men have to share something. It is not an optimal, dividing of the apple pie, where if women empower women, something will be reduced from their kitty. It is not like that. We have to develop very, very robust and solid partnership between men and women, so that together, as force of humanity, as the two creative sides with the yin and yang, or the masculine and feminine sides of this universe, they are able to bring about change in society. I strongly believe in the principle of the Archimedes lever, and I feel that if you give women a lever long enough and a fulcrum long enough, they will be able to bring about the change in society. So it is the level playing field that women are demanding to bring about social change. It is that small foothold that they are demanding, and that can be done by legislations in their favor. That can be done by smoothening the roadblocks that come. And the biggest roadblock is awareness about the perception, about the change in mindset, about the acceptability. So I think COVID, I am really, really grateful to this virus, and also very grateful for these discussions which are emanating from the post-COVID world that we are living in today, that we are once again bringing the focus back on women and households and heuristics, you know, working with hands. That is so very important, and I think women epitomize the working with hands quality. You will find them, cradling their babies on one hand, multitasking is something that they do beautifully. They can be in the kitchen and running their offices from the kitchen, looking after their babies from the kitchen, managing everything from their bedrooms. I think that kind of a functionality, that kind of an on-the-go attitude is something that comes very, very naturally to women. And I think, I feel that, women also because they are so busy, they multitask so much, they want to do things quickly, they want to deliver so much, because they're used to anyways delivering babies and other creative things. So those things come very naturally to them. So I think that women are very, very suited to this world today, because the world needs a soft touch. And we often have heard this, that the hand that rocks the cradle also rules the world, can also rock the world. Or sometimes you also say that the hand that wears the bangles can also make a difference, bring about a difference in the world. And women are bringing about a difference in the world. And it has become very, very evident in these times that women, because of their qualities of the head and heart, the beauty and the brains, the softer qualities and the professional approach to life, have been able to deal with this pandemic in a far better manner, because women are doing so much balancing today. They are the perfect example of Buddha in real life, because they are looking after their children, they are looking after the geriatric population at home, they are servicing the needs of their better halves, their spouses, upholding the entire household, especially in the COVID times, when the scaffolds of the support system were not available. She was doing everything right, from cleaning of the house, from the utensils, from the washing, with little help, some help from the other household members, definitely. But she was managing, because that is her responsibility. And she was also contributing to her professional duties outside the home, from the home. I think that beautiful mix is something that only women can do so seamlessly. That is the beauty that women bring to the table, and I think we must learn to appreciate women. We need a sisterhood of women, and I think the Brahma Kumari's organization do it very, very well. When I see them, I get a sense of so much of peace and calmness, and that is also a quality that women bring to the table. Now, I feel that being a woman myself, I can only speak about that community of which I have first-hand experience. But in no way would I want to assure the men folk. And feminism is for everybody, because I think we need to understand what feminism is. It is not so much about snatching rights. It is about equality and equity. It is about sharing. When you talk of feminism and empowerment of women, my idea basically is to share the responsibilities, is to share the burdens. It's basically an example of perfect division of labor, so that all of us, with our own strengths that we bring, our own inherent capabilities, we can make this world a better world, a more livable world, a more peaceful world, a more less argumentative world, a world which provides succor and healing to everybody. And I think this is what is the message that I would like to give, because women with the eight arms of Durga, the Nari Shakti, as they say, have the creative force of this world, and they also have the divine blessings of the universe, of the ultimate divine source. And I think we must learn to recognize, because also in the spiritual world, people who do spiritual sadhana also pray to the Eternal Mother before they get initiated. And also, and in fact, in the tantric system of meditation, the wife in fact becomes the mother, and that is the mother goddess, the Devi. So they also say in the Indian tradition that wherever, in whichever household, the woman is respected, is a household which is always blessed by the divine. So I think we must learn to respect the women in our households, and also learn to appreciate the qualities, the softer qualities that they bring in the table, on the table, which are always very, very good for conflict resolution in the world and for bringing about peace. And I think with these words, I would like to express once again my very, very humble gratitude to the Brahma Kumari International Organization for giving this opportunity to me to be able to speak my mind out and to talk about women and the various facets of women and the various important stuff that they bring on the table, the various important social values that they represent. And thank you so much for having me here on your channel, and I wish the deliberations of your two-day international congress and conference all success. Thank you very much, and all the best to you. Namaskar.
मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदया का, मुग्धा सिन्हा जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में इस कार्यक्रम के बारे में अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की और समाज में मूल्यों की आवश्यकता के बारे में प्रकाश डाला. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सेशन में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रज्ञा प्रसून जी की तरफ आप सबको ले चलना चाहता हूं. प्रज्ञा जी फाउंडर हैं अतिजीवन फाउंडेशन बेंगलुरु से. 22 साल की उम्र में उनके शादी के मात्र 12 दिनों बाद उन पर एसिड अटैक हुआ. आज एक दशक बाद उन्होंने अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है. एक विक्टिम से बदलकर एक सर्वाइवर बनकर और फिर आज एक क्रूसेडर के रूप में. प्रज्ञा जी ने अतिजीवन फाउंडेशन नामक एक एनजीओ की स्थापना की, जिसने आज तक 200 से अधिक एसिड अटैक विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करने में मदद की है. प्रज्ञा जी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सन 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आइए सुनते हैं प्रज्ञा प्रसून जी से उनके प्रेरणादायी विचार।
ओम शांति। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज आपके सामने अपने विचार रखने का अवसर मिला है। मैं आज आपके सामने बात करूंगी सोशल चेंज का और महिलाएं कैसे योगदान दे सकती हैं इस सोशल चेंज में हमारी सोसाइटी में। मुझे ये लगता है कि सोशल चेंज हमारे समाज में तभी पॉसिबल है जब हम अपने आसपास सारे लोगों को उसी इज्जत और उसी एक्सेप्टेंस के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करें। और क्योंकि हर इंसान अलग है, अलग अलग चैलेंजेस फेस करके आपके सामने आया है, आपको नहीं पता कि उनकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और उन्होंने किस तरीके से उन 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 घटनाओं का सामना किया है, किस करेज के साथ उन घटनाओं का सामना किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको अपने आसपास अपने सारे लोगों को बहुत इज्जत और एक्सेप्टेंस देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो पीछे हमेशा दबाए गए हैं, हमेशा जिनकी आवाज दबाई गई है, जिनको बोलने का अवसर नहीं मिला है, जो कभी बोल नहीं पाए, उतनी हिम्मत नहीं कर पाए, उतना साहस नहीं दिखा पाए कि वो कुछ अपना अपनी विचारधारा या अपनी सोच को आगे रखकर बढ़ें। मुझे ये लगता है कि औरतें इन इन इस चेंज में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं, क्योंकि वो नर्चरर हैं इस वर्ल्ड की, वो नर्चरर हैं हमारे फ्यूचर का। तो मुझे मैं ये मानती हूं कि जब नर्चरर को हम इतना एम्पावर कर दें कि वो उसे पता है कि उसके आसपास या उसको कैसे अपने फ्यूचर को संभाल के आगे लेके चलना है, तो हम एक बहुत बढ़िया सोसाइटी बना पाएंगे, बहुत बहुत हैप्पी, बहुत खुश और बहुत ही अच्छा सोसाइटी बना पाएंगे अपने अराउंड, अपने लोगों को एम्पावर कर पाएंगे। और ये महिलाओं में ये एम्पावरमेंट, जो नर्चरर में जो वो एम्पावरमेंट आएगा, वो इनर स्ट्रेंथ से आएगा और वो स्पिरिचुअल पाथ से आएगा। मुझे ये लगता है कि जब हम महिलाएं अपने ऊपर ये बिलीफ, ये भरोसा करके चलें कि हमने वो सही डायरेक्शन चुनना है और हमने वो सही रास्ता अपने फ्यूचर जनरेशन को दिखाना है जिससे कि एक अच्छा समाज बन सके, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी परवरिश दे पाएंगे अपने बच्चों को, अपने जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को या अपने आसपास सारे लोगों को। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी अपनी माँ का। हम तीन बहनें थी और मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, तो लेकिन माँ की सोच हमेशा ये थी कि अपनी बेटियों को पढ़ाना है और उनको पढ़ा के उनको एम्पावर करना है इतना ताकि वो आगे चल के अपने आप को संभाल सकें। तो मेरी माँ का ये कभी एम नहीं रहा कि इसको बड़ा करना है इसलिए कि इसकी शादी कर देनी है। मेरी माँ का ये एम था कि इसको पढ़ा लिखा के इतना समझदार एक अच्छा इंसान बनाना है ताकि ये अपना रास्ता खुद से चुन सके। तो मेरी माँ ने हमेशा हम तीनों बहनों को ये अपने आप को संभलने का, सीखने का और वो एक्सप्लोर करने का वो मौका दिया। शायद इसी वजह से हमने हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्यों हो रहा है। मैंने हमेशा ये आगे समझने, आगे सोचने की कोशिश की कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं और मैं आगे कैसे बढ़ूं। मेरी माँ का हमेशा ये कहना था कि जब तुम्हारी जिंदगी में हमेशा तुम्हारा एम्पावरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होनी चाहिए और तुम्हारा तुम अपने आप को बड़ा और अच्छा तभी बना पाओगे जब तुम अपने आसपास के लोगों की मदद करोगे, अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करोगे। और अपनी माँ की यही विचारधारा को मैंने कोशिश किया है कि अपनी बेटियों में डालूं। मैंने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं सिखाया कि तुमको डरना है किसी चीज से या तुमको मैंने हमेशा अपनी बेटियों को ये सिखाने की कोशिश की है कि इट इज ओके टू आस्क एनीथिंग व्हेन यू आर इन डाउट। इट इज ओके। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके सारे सिलियस्ट क्वेश्चन का भी, या वो सवाल अगर 5 बार या 10 बार भी पूछ रहे हैं तो मैं उसी शिद्दत के साथ उनके सवालों का वो 11वीं बार भी जवाब दूं, ताकि उनको कभी ये नहीं लगे कि दे आर अनहर्ड और दे आर नॉट हर्ड। और कभी उनको ये झिझक नहीं हो कि उनको ये पूछना नहीं चाहिए था। अगर तुमको नहीं आता है तो दिस इज द टाइम टू लर्न, दिस इज द टाइम टू आस्क एनीथिंग। और मैं अतिजीवन फाउंडेशन के माध्यम से भी यही कोशिश करती हूँ, जो बर्न सर्वाइवर्स और एसिड अटैक सर्वाइवर्स का, जिनको मैं मेडिकल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ उनका मेडिकल रिहैबिलिटेशन हो जाए और उसके आगे मैं कुछ ना करूं। मैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूं। मैं उन चीजों पे काम करती हूं। पहले अगर उनका इलाज करा दिया तो उसके बाद अब आपको क्या करना है। और मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस समय ये होता है उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट। मुझे ये लगता है कि उनको अगर पढ़ा दिया जाए, उनको अगर कुछ स्किल ट्रेनिंग दे दी जाए, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता उनकी जिंदगी में, या मैं उससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ये, और मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि उनका रिहैबिलिटेशन सिर्फ उनके फिजिकल और मेंटल रिहैबिलिटेशन पे नहीं लिमिट हो, उनका एम्पावरमेंट हो और उनको उनको वो आगे बढ़े, वो इंडिपेंडेंट बने। और मैं यही चाहूंगी, आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने आसपास जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको उनको ये हिम्मत दीजिए कि वो आगे बढ़ सकती हैं, ये भरोसा दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, आप आगे बढ़ सकते हो, आगे निकल सकते हो। बस अपने ऊपर वो भरोसा होने की जरूरत है, वो प्लानिंग करो, उस चीज को अचीव कर सकते हो। जिंदगी में कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है और ये सारी चीजें औरतें खुद इतनी हिम्मत वाली होती हैं, बस उनको वो भरोसा दिलाने की जरूरत है कि वो कर सकती हैं, बाकी सब तो वो खुद ही कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपके इन प्रेरक विचारों को इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ साझा करने के लिए। समाज में मूल्यों के आवश्यकता के बारे में हम जान रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी जी, जो सीधे कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीत के बड़े ही सुंदर बोल हैं, झरनों से संगीत है झरता। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं।
ओम शांति। राजयोग के अभ्यास से हमारा मन एक अच्छा मित्र बन जाता है और यह मित्र हमारे सच्चे मित्र से मिलाता है, परमात्मा से हमें मिलाता है। और जब ऐसे मित्र हमारे साथ हों तो फिर कोई कठिनाई बड़ी नहीं, हर मुश्किल आसान और सहज ही हम अपनी ऊंची से ऊंची मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो आइए इस गीत में हम इसी भाव को सुनते हैं। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, सागर भी रास्ता देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर भी रास्ता देता, पर्वत भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। जो करता वो ही जाने, जो करता वो ही जाने, क्या मिलता योग लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, प्रभु से कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, प्रभु से कुछ ना मांगे हम, योग करे हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अगन लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, मन को मीत बनाने से, हाँ प्रभु को मीत बनाने से। सुख का दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले, सुख का दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले, जीत हार हो फूल खार हो जितना खाए हिचकोले, सदा समर्थ सहारा वो, सदा समर्थ सहारा वो, देता हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु कुमीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से, हाँ मन को मीत बनाने से, ओ प्रभु को मीत बनाने से।
तूफान भी तोहफा हो जाता, प्रभु तुमको मीत बनाने से। कितनी सुंदर सी चीजें हैं जब भी चैलेंजेस लाइफ में आती हैं, तो अगर हम उन चैलेंजेस को हंसते हंसते फेस करते हैं, ईश्वर को अपना साथी बनाते हैं, तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। और इसीलिए इस गीत में ये जो बातें कही गई हैं, मैं समझता हूं वो हम सब लोगों के लिए अप्लाई करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता दीदी जी का इस गीत को साझा करने के लिए। हमारे अगले वक्ता हैं ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी, जो सब जोन इंचार्ज हैं जयपुर राजा पार्क सेवा केंद्रों की। आइए उनसे प्रेरणादायी विचार सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस के प्रति।
ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव की प्रिय बहनों, शिव शक्तियां, सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ उनके साथ हमारी महिला विंग के अध्यक्षा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी का भी आभार, संयोजिका सविता दीदी, आपने ये सुंदर वेबिनार का आयोजन किया उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। विषय भी बहुत सुंदर है, सामाजिक परिवर्तन के लिए मूल्यों का महत्व। वर्तमान समय हम देखते हैं अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और अशांति दुख का माहौल है। हम सब चाहते हैं परिवर्तन हो, हम बेहतर समाज का निर्माण करें, सुंदर समाज की रचना हो। इसका आधार कौन? नारी। नारी परिवार की धुरी है, नारी ही निर्माण करती है, बच्चों में संस्कार देती है, उनका जीवन जीने योग्य बनाती है। एक नारी यदि चरित्रवान है, शिक्षित है, संस्कारी है, तो पूरे परिवार को श्रेष्ठ संस्कार, उत्तम चरित्र देने का कार्य करेगी। परिवार से समाज है, समाज से देश है, देश से विश्व है। तो परिवर्तन की शुरुआत घर से ही है। नारियों में मूल्यों के प्रति जागरूकता, नैतिकता के प्रति उनमें जागरूकता हो, नैतिक चारित्रिक मूल्य, ये हमारे अंदर इनका बीज डालने वाली हमारी माँ, हमारी शिक्षिकाएं होती हैं। तो मूल्यों का आधार क्या है? मूल्यों का आधार नैतिकता है। नैतिकता अध्यात्म से विकसित होती है। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, परमात्मा का सत्य परिचय, हमें दिव्य गुणों का ज्ञान, ये सब अध्यात्म सिखाता है। फिर हमारी सोच वैसी बनती है, जैसी सोच वैसे हमारे संस्कार निर्मित होते हैं और संस्कार अनुसार चरित्र का निर्माण होता है। तो हम कहें कि सबसे उत्तम शास्त्र या सबसे उत्तम ज्ञान है संस्कारों का ज्ञान, मूल्यों का ज्ञान, व्यवहार शास्त्र। हमारे व्यवहार में पवित्रता हो, व्यवहार में श्रेष्ठता हो, व्यवहार हमारा सादगीपूर्ण, ईमानदारी, सच्चाई से युक्त हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारा प्रकृति से संबंध, मानव मानव का आपस में संबंध बिगड़ गया है और इसको सुधारने के लिए संस्कारों को सुधारना होगा, व्यवहार सुधारना होगा। मूल्य मानव को मानव से जोड़ते हैं, जैसे लकड़ी को लकड़ी से जोड़ा जाता है तो फेविकॉल काम में लिया जाता है, ईंट को ईंट से जोड़ा जाता है तो सीमेंट उपयोगी होती है, और मानव को मानव से जोड़ने के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। आज मानव एक दूसरे से स्नेह संबंध खत्म कर चुका है, शुभ भावना शुभकामना नहीं रही, स्वार्थ संकीर्णता लोभ आदि बुराइयां पनप गई हैं। तो दानवीय मूल्य मानवीय मूल्य और दैवीय मूल्य, तीन प्रकार के मूल्य हैं। दानवीय मूल्य जिसमें हम परहित नहीं सोचते, आक्रमणकारी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, अपने भले के लिए ही करते हैं और हिंसा आक्रमण की प्रवृत्ति होती है। मानवीय मूल्य में दया है, परोपकार है, करुणा है, वात्सल्य है, स्नेह है, सद्भावना है, और दैवी मूल्य जिनमें देने की भावना है, जिनमें सहयोग भाव है, मधुरता है, वो दैवी मूल्य है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बालक रिक्शा चला रहा है और रिक्शे पर भारी वजन का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। रिक्शा चलाते चलाते चढ़ाई आती है, पुल आता है, बालक पुल पे रिक्शा चलाने लगता है, हाँफ जाता है, तो वो सेठ जी से विनती करता है, आप थोड़ा उतर कर कुछ कदम पैदल आ जाओ तो मैं रिक्शा आगे बढ़ाऊं। सेठ उसे दुत्तार के कहता है, मैंने तुझे पैसे दिए हैं, मैं मुफ्त में नहीं बैठा हूं, तो क्या समझता है, जा मुझे उतार दे, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये क्या है, दूसरे के बारे में ना सोचना, दूसरे के लिए करुणा नहीं है, वो स्वार्थी है। दूसरी स्थिति में वो सेठ कहता है, बेटा मेरे से चला नहीं जाएगा, तू धीरे धीरे चला दे रिक्शा, मैं बैठ के चलता हूँ, तुझे थोड़े और ज्यादा पैसे दे दूंगा, तेरा मेहनताना और कर दूंगा। तीसरे स्थिति में सेठ उस बालक को कहता है, बेटा तू खुश रहे, चल, दोनों ही चलते हैं हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, कभी मैं बैठ जाऊंगा, कभी मैं उतर जाऊंगा और मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये उसकी करुणा की प्रवृत्ति सहयोग भाव है। जब ये ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं और हम देखते हैं, सीखते हैं, जो दैवी प्रवृत्ति का होगा वो दैवी गुण ही उठाएगा, जो स्वार्थी प्रवृत्ति का होगा वो स्वार्थ भाव से ही व्यवहार करेगा। तो हम ये समाज का वातावरण, घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, हमारे चारों तरफ जिस तरह के लोग हैं उनसे हम प्रेरित होते हैं। यदि हम परिवर्तन लाएं, दैवी मूल्यों को स्थान दें, मानवीय मूल्यों को स्थान दें, उनको बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से समाज में भी बदलाव आएगा। ये मूल्यों का जो पतन हुआ, नैतिकता का पतन हुआ, पहले हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ थी, दिव्य थी, हम दिव्य गुणों से भरपूर थे, धीरे धीरे देह अभिमान में आए, अहंकार बढ़ा, अहंकार के कारण स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ी, लोभ प्रवृत्ति बढ़ी, और लोभ प्रवृत्ति ने, स्वार्थ प्रवृत्ति ने अनेक समस्याएं उत्पन्न की। रिश्वत लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं, मिलावट करते हैं चीजों में, खाने पीने की चीजों में भी मिलावट। इसका कारण धन की लालसा और संवेदनशीलता नहीं है कि लोगों का क्या होगा नुकसान। धन के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाती और नैतिकता खत्म हो जाती, मूल्य समाप्त हो जाते हैं। अहंकार में आके हम कुर्सी के लिए लड़ते हैं। देश की चिंता किसी को नहीं है, कुर्सी बचाने में लगे रहते। तो जो मूल्य पहले देश के लिए सेवा के थे, त्याग के मूल्य थे, कल्याण की भावना थी, देश के लिए समर्पण था, ये ऊंचे मूल्यों से हम नीचे गिर गए और सिर्फ अपनी लालसा के लिए, अपने अहम की तृप्ति के लिए देश सेवा का एक बाना पहन के कार्य कर रहे हैं। आपको एक स्थिति बताती हूँ कैसे परिवर्तन आया। एक युवती गहनों से सजी धजी नदी में डूब रही थी। एक युवक ने देखा, उसको उस पर दया आई, वो भी नदी में कूदा और उसने युवती को कंधे पे डाला और नदी पार करके उसे छोड़ दिया। कुछ नहीं बदले में कामना रखी। कुछ समय बाद वही घटना हुई, युवक के मन में आया, चलो मैं इस युवती को नदी पार करा देता हूँ। नदी पार करने के बाद उसने सोचा, इसका मैं गहना ले लूं, सोना ले लूं, मैं मालामाल हो जाऊंगा। नदी पार करा दी है और गहना सोना ले लिया, युवती को छोड़ दिया। फिर तीसरी घटना कुछ समय बाद हुई, युवक ने नदी को पार, युवती को पार किया नदी से, उसने गहना भी ले लिया और युवती का चरित्र भी ले लिया। उसे मौका मिल गया युवती के साथ आनंद लेने का। तो धन की लालसा, वासना, ये दो विकार बढ़ गए। तो किस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यों में गिरावट आई, चरित्र में गिरावट आई। अब पुनः हमें अपने मानवीय मूल्यों को, दैवी मूल्यों को विकसित करना होगा और इसके लिए अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान है। नीतियां बनाती है सरकार नारी रक्षा के लिए, नारियों के सुरक्षा में, उनके लाभ के लिए कई नीतियां बनाती, परंतु जब तक नीयत नहीं बदलेगी तब तक उन नीतियों का लाभ भी नहीं मिलेगा। नीयत तो अभी भी वासना लालसा की है, लोभ की है, स्वार्थ की है। और कई बार तो उन सरकारी नीतियों का लोभ में आके गलत फायदा भी ले रहे हैं, गलत उपयोग भी कर रहे हैं। दहेज प्रथा के विरुद्ध नीतियां बनी, कानून बने, लेकिन आज उसका गलत प्रयोग, झूठे इल्जाम, झूठी आरोप लगा के सास ससुर को जेल तक भिजवा देते हैं। तो हमारी नीयत साफ हो, हमारे इरादे नेक हो, विचारों में पवित्रता हो, शुद्धता हो। भले आज कितने उपदेश हमें मिलते हैं, कितने हम भाषण सुनते हैं नारी कल्याण के, समाज सुधार के, नारी उत्थान के, वो प्रभावशाली भाषण असर भी डालते हैं, लेकिन फिर प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके लिए नित्य हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। नित्य हम ज्ञान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, अभ्यास करें, तब हमारे विचारों में बदलाव आएगा, कर्मों में बदलाव आएगा, संस्कारों में बदलाव आएगा और बीज रोप सकेंगे। तो प्यार, स्नेह, सौहार्द, सहयोग, सहानुभूति, ये हमारे कुछ ऐसे मूल्य हैं जो परिवार को भी जोड़ते हैं, परिवार में एकता बनाए रखते हैं, स्नेह संबंध श्रेष्ठ होते हैं। नहीं तो हमने बहुत से ऐसे उदाहरण सुने हैं, पढ़े हैं कि बहुएं जब सास ससुर का आदर नहीं करती, सम्मान का मूल्य खत्म, सेवा भाव का मूल्य समाप्त हो गया, आदर नहीं, तो वो सास ससुर को वृद्धाश्रम तक पहुंचा देती हैं। और उनके बच्चों ने जब देखा सास ससुर के साथ, मतलब उनके दादा दादी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो बच्चों ने भी सीखा और अपने माता पिता को सबक भी सिखा दिया। कई बच्चे उनमें ऐसे बीज होते हैं सद्गुणों के कि वो माता पिता को भी शिक्षित कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। एक बार एक बच्चे के पिता ने कहा, बेटा बेसमेंट से कंबल ले आओ, कंबल ही बहुत है तुम्हारे दादाजी के लिए। उसमें से एक टुकड़ा उन्होंने काटा, तो बेटे ने क्या किया, आधा टुकड़ा लाके दिया, आधा टुकड़ा रख लिया। पूछा उससे पिता ने, ऐसा क्यों किया, तो बोला, आप जब बूढ़े होंगे ना तो आधा कंबल आपके काम आएगा। अर्थात माता पिता जो करते हैं बुजुर्गों के साथ, जैसा व्यवहार करते, जैसे उनके प्रति धारणा रखते, जैसी उनके साथ भाषा का प्रयोग करते, वो बच्चे भी सीख जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर न्याय, ईमानदारी, संवेदनशीलता बनी रहे और हम अपने आचरण से मूल्यों को फैलाएं। मूल्य ही हमारे जीवन को अमूल्य बनाएंगे ना, लेकिन अब मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है और ये अवमूल्यन इसीलिए हो रहा है कि मूल्यों की शिक्षा नहीं मिलती, परिवार में वो वातावरण नहीं मिलता, संस्कार नहीं मिलते हैं, तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। और ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं ना, इसलिए अध्यात्म इसकी नींव है, नैतिकता आधार है, नैतिकता को महत्व दिया जाए, अनुशासन को महत्व दें, संयम को महत्व दें। अगर हम एक भी नियम तोड़ते हैं तो हम एक तरह से जहाज में एक दरार पैदा कर देते हैं। जैसे समुद्र में जहाज है और उसमें दरारें बनती जाएं, तो समुद्र का पानी जहाज में भरता जाएगा, भरते भरते वो जहाज को डुबो देगा। इसी तरह हम सोचते हैं कई बार, अगर हमने नियम पालन नहीं किया, इस अनुशासन को तोड़ा या हम संयम नहीं बरतते तो क्या फर्क पड़ता है। ट्रैफिक की रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स में रेड लाइट से पार करने की कोशिश करेंगे, हरी लाइट से निकलना है, ये नियम तोड़ते, और भी नियम है हम उनका उल्लंघन कर देते हैं। एक भी दरार आई तो धीरे धीरे एक आदत बन जाती है नियमों को तोड़ने की, अनुशासन को तोड़ने की, समय की पाबंदी नहीं, हमारी शिक्षा पे कोई हमारा ध्यान नहीं, तो वो दरारें बढ़ते बढ़ते जीवन रूपी नैया में कीचड़ आ जाता है, समुद्र का जल आ जाता है और जीवन पतन की ओर चला जाता है, डूब जाता है। तो अब बदलाव लाना है, बेहतर परिवर्तन लाना है, सुंदर परिवर्तन लाना है, तो हमें मानवीय मूल्य, दैवी मूल्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है और मानवीय और दैवी मूल्यों को बढ़ाने का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से हम अपना संबंध बनाएं, उनसे गुणों को लें। वो प्रेम के सागर, तो प्रेम का गुण मेडिटेशन से बढ़ाएं। वो शांति के सागर हैं, शांति का गुण अपने में विकसित करें। वो पवित्रता के सागर हैं, मेडिटेशन से ये गुण आएगा तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और परमात्मा में विश्वास भी बढ़ेगा। जितना आत्मविश्वास और परमात्म शक्ति में हम विश्वास रखेंगे उतना हम सुंदर जीवन बनाएंगे। आपने माताओं बहनों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है परमात्मा ने। माता गुरु है, माता जगत जननी है, वंदे मातरम कहा गया है। तो समाज को एक दिशा दे सकती हैं, वो दशा दे सकती हैं। अगर पुरुष गलत कमाई धन की लाता है, बहुत धन आ रहा है अनैतिक कमाई से, तो वो पूछें कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सुधार लाने के भी निमित्त बन जाती है। तो ये सुंदर वेबिनार जो आयोजित हुआ, इसके लिए पुनः आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी जी का, जो आपने बताया कि समाज में जो ये चीजें हम देख रहे हैं जिसे हमें बदलने की जरूरत है, जहां हम समझते हैं कि बदलाव की आवश्यकता है, वो बदलाव हमारे मूल्यों से हो सकता है। दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्फ्रेंस के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के रूप में आज हमारे साथ एकता सिन्हा जी जुड़े हैं। एकता सिन्हा जी फीचर्स हेड हैं राजस्थान पत्रिका समूह के और दिल्ली से आज वो हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी शुभकामनाएं इस कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में।
ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रही हूँ कि मुझे आप सबके सामने आज कुछ बोलने का मौका मिला है, अपने विचार प्रकट करने का मौका आप लोगों ने मुझे दिया है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो भी विचार है आप सब तक सही तरीके से पहुंच पाए। आज का विषय है वैल्यू फॉर सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव के मूल्यों की हम बात कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया है उसके साथ ही समाज की संरचना का निर्माण होता है और उसके आधार पर समाज की जो कार्य प्रणाली है वो तय होती है और उसका एक नया जन्म भी होता है। सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज का हिस्सा है। कोई भी समाज अब ये नहीं कह सकता है कि सामाजिक परिवर्तन वहां होते ही नहीं है या सामाजिक बदलाव वहां होता ही नहीं है। हाँ, बस इतना होता है कि कहीं इसकी जो गति है वो स्थिर होती है, कहीं तेज होती है, कहीं बहुत धीमी तरीके से हो रही होती है, पर होती जरूर है क्योंकि ये अनवरत प्रक्रिया है और इसमें हम बदलाव कर नहीं सकते हैं। बट इसके साथ साथ क्या है कि प्रत्येक समाज के जो एक मूल्य भी तय होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ मूल्य तय किए जाते हैं समाज में, समाज में रहने वाले प्राणियों के लिए कुछ मूल्य तय किए जाते हैं और समाज के सदस्यों को उसको मानना पड़ता है, उसके जीवन का वो मुख्य उद्देश्य होता है। तो समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो किसी तरह से भी उनके वो जो मूल्य हैं जो तय किए गए हैं वो टूटे या टूटकर बिखर जाए। अब मूल्य में कई तरह ये जो मूल्य होते हैं ये कई तरह के सकारात्मक पाठ हमें पढ़ाते हैं, हमारे जीवन को एक सही दिशा देते हैं और हम सही राह पे निकल पड़ते हैं। पर आज क्या है कि ये इससे इन सब चीजों से हम कहीं ना कहीं भटक गए। हम अपने आसपास देखो क्या शांति नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, किसी अलग दौर में निकल चुके हैं, किसी अपनी धुन में चल रहे हैं। अब इसका एक प्रमाण है, छोटे से छोटा बच्चा भी है और बड़ा व्यक्ति, सभी इसी में है। एक छोटे से बच्चे से भी आप एक सवाल पूछ लो कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो वो कभी भी आपको सोचेगा ज्यादा नहीं, तुरंत बता देगा कि मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ कि फलाने एक्टर की तरह या फलाने सेलिब्रिटी की तरह या फलाने स्पोर्ट्समैन की तरह, कुछ भी उसको उसके जीवन का तुम्हें और क्या चाहिए, तो मुझे फलानी गाड़ी चाहिए। इसी तरह से किसी युवा से पूछो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोले मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे वैसे सुकून की जिंदगी चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा हो, मुझे ज्यादा तकलीफ की नौकरी ना करना पड़े। तो आप देखो मूल्य कहीं ना कहीं भटक गए हैं, उनका जीवन का मूल्य क्या हो गया है, वो भौतिक सा हो गया है। अब भौतिक मूल्य जब जीवन में आ जाता है तो हम अपने जो नैतिक मूल्य है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और इसके साथ ही क्या होता है कि समाज में जो बदलाव जिसके जो अंतर्गत प्रक्रिया है वो जो चल रही है उसमें क्या होता है कि वो भी कहीं ना कहीं अलग दिशा में भागने लग जाती है। बदलाव तो हो रहा है लेकिन वो सकारात्मक ना होकर नकारात्मक ही होने लग जाता है। हम अपनी महिलाओं की बात करें, हमारी स्थिति अभी भी 2M दर्जे की है। हमने बहुत कुछ पा लिया है अपने पिछली पीढ़ियों से, हमने बहुत कुछ पा लिया है, हमारी स्थिति सुधरी हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एकदम हम अब हमारे को सुधार की जरूरत नहीं है, हम मर्दों की बराबरी कर चुके हैं और हम पुरुष समाज में बराबरी के दर्जे पर पड़े हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी संघर्ष जारी है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत बेसिक बेसिक चीजों के लिए तरस जाती हैं, उन्हें 5 रुपए के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, कई बार तो उनके खुद के पैसे होते हैं जिसे भी उन्हें दूसरों से मांगना पड़ता है। तो ये तो आर्थिक स्थिति भी हमारी, जिसके बदलाव होने के बावजूद हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। उसके अलावा हम देखें कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, माँ हैं और समाज में एक अच्छे दर्जे पे बैठी हैं, फिर भी उनकी जो मानसिक स्तर है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उन्हीं एरा में है जहां पे औरतों की स्थिति अच्छी नहीं थी या फिर उन्हें 2M दर्जा का ही माना जाता था। मुझे एक घटना याद आ रही है, गुड़गांव में कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ लड़कियां छोटे कपड़ों में शॉपिंग कर रही थी, तो पास पर एक पढ़ी लिखी महिला जो अंग्रेजी में ही बाकायदा बात कर रही थी, उन्होंने उन लड़कियों को टोका कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूम रही हो, तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा बलात्कार हो जाएगा, तुम्हारा रेप हो जाएगा। जब लड़कियों ने रिएक्ट किया तो उस महिला ने अपनी गलती मानने की जगह बसात में खड़े एक लड़के से कहा कि तुम क्यों नहीं इनका रेप कर देते हो। ये मामला काफी तूल पकड़ लिया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए ये वीडियोज और बहुत सारी इसकी चीजें आने लगी बाहर। बाद में इस महिलाओं को माफी मांगनी पड़ी। तो इस घटना का जिक्र मैं सब इसलिए कर रही हूँ कि समाज में बदलाव तो हुआ, लड़कियां बाहर निकली, सब कुछ कर रही हैं, आत्मनिर्भर है, लेकिन वो एक जिस औरत ने उन लड़कियों पे ये इल्जाम लगाया उनके मूल्यों में शायद कोई बदलाव ही नहीं हुआ, उन्हें सामाजिक बदलाव के मूल्य समझ ही नहीं आए। वो भी एक माँ है, उनके घर में बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने एक मिनट भी ये नहीं सोचा कि मैं सामने वाले जो बच्चे से कुछ कह रही हूँ उसका असर उस बच्चे पे तो छोड़ दो, मैं समाज को क्या दे रही हूँ, क्या मेरे आसपास क्या हो रहा है, उसका फायदा क्या हुआ। सोशल मीडिया पर उनकी किरकिरी हुई, उनके घर वालों को माफी मांगनी पड़ी और बहुत सारी चीजें की। इसी तरह से आप देखो कि सोशल मीडिया का अगर जिक्र मैं कर रही हूँ तो सोशल मीडिया भी एक सामाजिक बदलाव का एक हिस्सा बन चुका है। इसके माध्यम से महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं। वो महिला जो घर में बैठी थी, जिनको समझा जाता था कि हाउसवाइफ है, किसी काम की नहीं है, बाहर नौकरी नहीं कर सकती, वो भी यूट्यूब पे अपने वीडियोज बनाकर अपनी रेसिपी शेयर कर रही है या DIY मतलब कैसे कोई चीजें घर से बचे सामानों से कैसे क्या चीजें बनाएं वो सब चीजें शेयर कर रही हैं। लेकिन इसका भी इसमें भी मूल्य की कैसे हानि हो रही है या कैसे क्षति की जा रही है इसका भी मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। फेसबुक पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे रिनॉन्ड शेफ हैं जो अपना पेज चलाते हैं और उनके फैन क्लब पेजेस होते हैं वो, और उसमें लोग औरतें फॉलो करती हैं और अपनी अपनी रेसिपीज शेयर करती हैं और एक दूसरे को बताती हैं कि ये नई डिश क्या है, किसने बनाई, किस ओकेजन पे बनाई। तो आप जब उस व्यू को फॉलो करने लगोगे तो मैं भी एक को फॉलो करती हूँ ऐसे एक दो पेजेस को, तो मैं देखती हूँ कि जैसे मुझे कोई डिश नहीं आ रही है बना रही है और मैंने वहां पोस्ट कर ली एक्साइटमेंट में, ये सोच के कि फलाने वाले को बहुत कमेंट्स और लाइक्स मिल रहा है तो शायद मुझे भी मिले। तो एक सेकंड किसी दूसरी औरत को ये नहीं लगता है बोलते हुए कि कितनी गंदी रेसिपी है, तुम्हें तो फोटो खींचना भी नहीं आया, तुम्हारी रेसिपी इतनी गंदी दिख रही है, कोई खाएगा कैसे, मुझे देखकर उसको देखकर उल्टी तक आ रही है। मतलब आप ये सोचो, खाने की चीज है, इस खाने और पेट के लिए ही तो लड़ाई चल रही है इंसान की, और हमें इतने संघर्ष करके हम रोटी 2 वक्त की लेकर आते हैं और हम लोग किसी ने मेहनत की है कोई वहां पर लेकर आया है और हमें 5 मिनट सेकंड भी नहीं लगा, हम उसकी बुराई, उस व्यक्ति की बुराई तो कर ही रहे हैं, उस अन्न की भी बुराई कर रहे हैं। मतलब कहाँ है बदलाव? तो दिख रहा है कि हम वहां मंच तक पहुंच गए सोशल मीडिया के, लेकिन हमारे नैतिक मूल्य कहाँ है, हमारे मूल्य कहाँ है, वो कैसे हम हासिल कर पाए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इसके बारे में शायद हम सब सोच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन महिला होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि पुरुषों से कहीं हद तक ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज हम कितनी भी तरक्की कर ले, अगर एक बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो पिता को कोई कुछ नहीं कहता, तुरंत दो चार लोग ये कहते हैं माँ ने तुझे मारा नहीं होगा तभी तू ऐसा कर रहा है, या माँ ने तुझे सिखाया नहीं होगा तभी तू ऐसा कर रहा है, माँ ने तुझे कुछ सिखाया मतलब कोई मूल्य ही नहीं दिए, मतलब कोई नैतिकता का पाठ ही नहीं पढ़ाया। तो मैं कुछ हद तक ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुषों की जिम्मेदारी आप बच्चों के परवरिश में खत्म हो जाती है या उनका कोई रोल नहीं है। अब बहुत हद तक ये देखा जा रहा है कि महिला पुरुष दोनों ही काम कर रहे हैं तो काफी हद तक दोनों बराबरी से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं मानूंगी कि हमारी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है, इसलिए नहीं कि ताना मिल रहा है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, इसलिए भी ज्यादा है कि एक जननी होने के नाते हम बच्चे को ये तो बताएं कि ये सही है ये गलत है, सोशल मीडिया का ये सही इस्तेमाल है ये गलत इस्तेमाल है, मॉडर्निटी का ये सही इस्तेमाल है ये, मतलब एक रेखा एक सीमा रेखा होती है, फाइन लाइन्स जिसको कहते हैं, उसको समझाने की बहुत जरूरत है और उसको समझने की हमें खुद भी सबसे पहले जरूरत है। जैसे मैं ही नहीं समझाऊंगी तो मैं अपनी आगे वाली पीढ़ी को क्या समझाऊंगी, उस बच्चे को क्या समझाऊंगी, क्योंकि हम देखेंगे कि आज जो परिवार है वो परिवर्तनशील है, मतलब परिवार में आप कोई भी घटना घटती है चाहे चीजें होती है। एक समय था जब हम लोग छोटे थे तो एक कोई भी स्टोरी होती थी हमारे जीवन में स्कूल में कॉलेज में वो घर परिवार के सारे सदस्यों को पता होता था, पर आज के बच्चे इतने समझदार हुए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम पर्सनल बन गई है और वो अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे इसकी वजह से कई कांड हो जाते हैं, कई चीजें अपनी घटनाएं घटती हैं, कोई बहुत सारी शिकायतें आती हैं। तो हम अपने घर के माहौल को बदलाव के साथ साथ ऐसा बना के रखें कि जरूरी नहीं है कि मतलब बच्चा मतलब डर ही हमसे, बच्चे के साथ हम सकारात्मक माहौल बनाकर उसकी ऐसा बना दें कि उसके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटे या कोई चीज उसकी परेशानी हो वो तुरंत आकर हमें बताए, हमें हमसे शेयर करें और हम उसके बताएं उनको सही क्या है गलत क्या है, ताकि यही बच्चा जब बड़ा हो और वो समाज के सामने डायरेक्ट फेस करे, समाज को डायरेक्ट फेस करे, तो उसको सही पता हो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दिस इज अ राइट थिंग दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस इज अ राइट वे दिस इज अ रॉन्ग वे, बस इतना है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि परंपरा एक जीवन का मूल्य है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम सौंपते हैं, और हम अपने परंपरा के साथ अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हम अपने मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम जो स्त्रीत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्त्री होने का समान अधिकार मांग रहे हैं उन सबका कोई मतलब नहीं होता है। महिलाओं के सही विकास के लिए जरूरी है कि वो पहले अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने आसपास की जिम्मेदारी समझे, मतलब मैं खुद चुगली ना करूं किसी की तो मैं तब एक्सपेक्ट करूं ना कि सामने वाला भी मेरी चुगली ना करे, मतलब हम महिलाओं के लिए एक तरफ अधिकार भी चाहते हैं और दूसरी तरफ हम महिला होकर दूसरी महिला के मतलब अपने परिवार के दूसरे सदस्य जो महिलाएं हैं उनकी चुगलियां भी करते हैं, तो ऐसे समाज में बदलाव पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे जो समझ में ये आ रहा है कि हम सबको एक सकारात्मक सोच के साथ नई राह की तलाश करने की जरूरत है, और इसी के साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी। एक चीज सब लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि हम आज ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, तो महिलाओं के लिए हम सब महिलाओं के लिए जो हमारी यहाँ दादियां हैं और जो हमारी बहनें हैं जो काम कर रही हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, उनके त्याग को बलिदान को उनके जीवन से हमें कुछ जो कुछ भी अपनाने का मौका मिले उसे अपनाने से कभी चूकना नहीं चाहिए और खुद को बड़ा कभी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जहां जिससे जो मिले वो लो और सही राह में निकल पड़ो। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी, आपने बड़े ही प्रेरणादायी विचार हमारे साथ साझा किया। आपके विचारों से ये लगता है कि हाँ, अगर हम परिवर्तन की राह पर चलना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं और हम सब में ये ताकत है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अतिथि की तरफ, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो हैं श्रीमती आलोकनंदा रॉय जी। एक बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक्सपोनेंट हैं इंडियन क्लासिकल डांस के, और साथ साथ एक रिफॉर्मर हैं। फॉर्मर मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप होने के साथ साथ इन्होंने अपने काम के जरिए जेल में रहने वाले इनमेट्स के रिफॉर्म के लिए अपने कला और लव थेरेपी का इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत जेल में रहने वाले क्रिमिनल्स की लाइफ में भी एक अनूठे परिवर्तन देखने को मिले। आइए उनसे सुनते हैं उनके प्रेरणादायी विचार।
अ वुमन्स रोल इन सोशल चेंज। ओम शांति। इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर, सच एन ऑनर टू बी इनवाइटेड बाय द ब्रह्म कुमारीज टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ देयर फंक्शंस, एनी ऑफ देयर प्रोग्राम्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स। When we talk about women, we talk about a power that is God-gifted. Maybe that is why we worship Goddess Durga, Saraswati, Lakshmi, and many others. We look up to a woman for everything we need, everything we aspire for. And only a woman can be a mother who nurtures, cradles, and shapes a child's life, a child who belongs to the society. We have a tremendous responsibility. Sometimes we forget that how empowered we actually are. We think we are weak, but we are not. When I will speak about my personal experience, especially with the prisoners of West Bengal, their children, and yes, men and women, the transformation that happened, which many know and many may not know, the transformation of a human mind could only happen because I was a woman, I was a mother. From madam, I became ma, a mother. And although I, of course, use dance as my tool to sort of bring out their positive energy and channelize it, because no child is born an offender. It's sometimes very, very difficult to understand why a person does wrong things, because we are not in that position. But I, as a mother figure, just tried to understand them, being non-judgmental. I don't think a man could have done it. A man cannot give a mother's love. All the people call it the dance therapy, because whatever happened has happened through dance. But I call it the love therapy. I treat them as my children. I scold them when they're naughty. I love them as they are, and believe me, they are different human beings today. And it is the power of a woman, not me. I'm not talking about myself. I'm talking about a woman, a mother, who could bring about and who can bring about a change in society. And we can shape not just children, we can shape the thought process, the way people can be to accept society as a wonderful place, a platform where we can all come together and be a family. We are all God's children. Each one of us are God's blessing, and we should find, and at least I'm talking about myself, I see God in every human soul, because that is where God is, in every human being. If somebody is off track, that person can be brought back, and we can do it through love. A mother's love can make wonders, and I'm sure all women, each one of us, can make a change, can make a difference to the society. We will, we have been doing it, and we can. And we Indian women are extremely strong, extremely strong. We just don't realize our strength. And I think it's time that we realize that. And yes, especially, you know, we have seen in history that Bengal has produced such strong women from pre-independence time, even before that. And they have made a difference to the society. They have fought for the independence of our country. Why can't we just be together? Be a woman. We don't want to be a man. A woman's liberation does not mean that we want to be like a man. All we want is equal opportunities. And things are changing in many ways, and we have to make use of it without losing our femininity, our kindness. Only a mother can give, and let's all make a difference. Our femininity, our kindness, only a mother can give, and let's all make a difference. A beautiful difference to the society as a woman. Om Shanti. Thank you for inviting me to speak about women and how they can make a difference to the society. Thank you once again, the Brahma Kumaris. You know, I not just respect them, I look up to them for guidance. I look up to them because they have made a difference to so many lives. They have touched so many lives. I'm just a follower, and I do thank you once again for making a difference to my life, to make me a better mother, a better woman of the society. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक नंदाराव जी का. मैं समझता हूं इस कॉन्फ्रेंस में हमने अनेकों विचारों को संजोने की कोशिश की है. अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई अलग अलग महिलाओं ने, जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया तो है मगर लोगों के जीवन में परिवर्तन का भी काम किया है, उन लोगों के जीवनी से, उनके विचारों से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं. आशा करते हैं ये सभी प्रेरक विचार हमें आगे आने वाले समय के लिए प्रेरित और मोटिवेटेड करते रहेंगे. ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के विमेन्स विंग के इस ई कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद. मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्फ्रेंस पसंद आया होगा और आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. आप सभी के लिए प्यार भरी ओम शांति और नमस्कार.